ओम शांति। आज का वरदान किसको याद है? बोलो। तो हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है तो किस पे विजय हो? मन और बुद्धि पर। बाकी कर्मेंद्रियों पर स्वतः ही विजय हो जाएगी। बाकी कर्मेंद्रियों में और कौन सी हैं जिन पर हमें विजय प्राप्त करना है? आंख, कान, मुख, जीभ। चार तो इम्पोर्टेंट। जीभ बोलने के लिए भी है और जीभ खाना, स्वाद, स्वाद इंद्रिय कहते हैं इसको। इसलिए और लोग ऐसा मानते रहे कि जिसने स्वाद इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली वो बाकी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी का ध्यान दिलाऊं, कुछ दिनों से पहले और आगे भी देही अभिमानी बनने की बात मुरलियों में बहुत आ रही है। आ रही है ना? देही अभिमानी अनेक समस्याओं से मुक्त होने का आधार है। देही अभिमानी व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त करा देता है। पीछे गुई ये बात आ गई है दो तीन दिन पहले ही। पुरानी दुनिया से स्वतः ही लगाव खत्म होगा और नई दुनिया से लगाव होता जाएगा। बहुत ही गहरी बात है। जैसे ब्रह्मा बाबा को नई दुनिया का सीन सामने रहता था, हम भी इस पे ध्यान दें। जो कुछ हमें प्राप्त करना है वो भी हमारी स्मृतियों में रहे। मन बुद्धि पर हमें विजयी होना है। संसार में सबसे कठिन काम माना जाता है मन को जीतना, मन को सही दिशा देना, मन जो नेगेटिव हो रहा है उसको पॉजिटिव करना। आज संसार में जहां भी दुख है, अशांति है, कोई लोग परेशान हैं या चिंताओं में बहुत हैं, उसका कारण बोलो मन। मन इतना नेगेटिव हो जाता है कि उसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है। बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी और बुद्धि में हमें क्या भरना है? सद्ज्ञान, पावरफुल ज्ञान, ज्ञान भी शक्तिशाली ज्ञान। ज्ञान के कई स्वरूप हैं। ज्ञान लाइट भी है जो हमें रास्ता दिखाता है, तो ज्ञान माइट भी है जो हमें शक्तिशाली बनाता है, तो ये ज्ञान हमारी विजडम भी है जो हमें दिव्य विवेक प्रदान करता है, ये हमें राह भी दिखाता है। ज्ञान से, बुद्धि से ही हम जानते हैं ना ये करें ये नहीं करें। बुद्धि में ही तो हमने ज्ञान भरा है, उसको धारण किया है, तो बुद्धि के ज्ञान और उसकी शक्ति द्वारा हमें मन को कंट्रोल करना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही उस दिन, सुख पवित्र आत्मा के दृष्टि वृत्ति कृति। कृति क्या? सुख देना, सुख लेना। माताएं अपना ज्ञान छलकाओ जरा। दृष्टि क्या? सिंपल पूछा मैंने। बहने बताएं दृष्टि कैसी होगी? आत्मिक दृष्टि। और वृत्ति? पीछे वाले भाई बोले सुभावनाओं से, श्रेष्ठ कामनाओं से भरी हुई। कभी बाबा कहा करते थे शुरू में, जब तुम्हारे अंदर संसार की हर आत्मा के लिए सुभावनाएं हो जाएंगी, तब विनाश होगा। ऐसी वैसी भावना लगी रहती है जीवन में, किसी के प्रति कैसी भावना, किसी के प्रति कैसी भावना। तो बाबा ने विशेष किस पर बोला था, सुख सुख लेना है और देना है। कई लोग अपनी सेवाओं से भी सुख लेते हैं, कई लोग अपने संबंधों से भी सुख लेते हैं, कई लोग अपने धन से भी सुख लेते हैं। मन भी सुखों का आधार बनता है। मुरली का सुख, अमृत वेले का सुख, वो तो अनुपम है ही। कई लोग अपने धन से भी सुख नहीं लेते न देते। देखिए ऐसे लोग माताओं ने, माताओं से पूछ रहे हैं, ऐसे लोग देखे आपने जो पैसा तो है लेकिन सुख लेते देते नहीं, देखे? भाइयों ने तो देखे होंगे। दुख लेना और दुख देना, बहुत आत्माओं का ध्यान इस पर तो रहा है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है। ध्यान रखते ही हैं और बहुत आत्माएं इसमें सफल हैं। वे मुख से कड़वे वचन न मिले निकले, कोई ऐसा व्यवहार हम दूसरों से न करें, कोई कर्म ऐसा न करें जो अनेक आत्माएं दुखी हो जाएं। लेकिन दुख लेना नहीं है, ये बहुतों से आता नहीं है। उसका ही बाबा थोड़ा विस्तार कर रहे थे। कोई व्यक्ति हमें अनादर सूचक शब्द बोलता है, अपमान करता है, क्या कहा बाबा ने, कैसी चीज है ये, अच्छी या बुरी? तो ये खराब चीज है, ये बुरी चीज है, इसको लेना चाहिए? वैसे भी नहीं लेना चाहिए। और ये भी है कि जब हम कोई चीज नहीं लेते किसी की तो उसके पास रह जाती है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं, इसने मेरा अपमान किया, हमने ले लिया। ये कहना कि इसने मेरा अपमान किया, हमने ले लिया, बुरी चीज को अपने अंदर ले ली, स्वीकार कर लिया, दुख शुरू हुआ, चिंतन बदला, दृष्टिकोण बदला, भावनाएं बदली, तुरंत बदल जाती हैं। हम उसको अपना मित्र नहीं समझेंगे, इसने चार लोगों के बीच में हमारी इंसल्ट कर दी, ये शत्रु है हमारा, देखेंगे इसे टाइम पे, आने दो जरा मौका, इसको भी तो कभी मौका मिलेगा। सब कुछ बदल जाता है, अभी से चेंज करना हमें। किसने अपमान के शब्द बोले, यदि हम बहुत अच्छे स्वमान में रहते हैं तो अपमान फील नहीं होगा। बाबा के शब्द याद करें, जिसके अंदर अभिमान बहुत है उसे ही ज्यादा अपमान फील होता है। छोटी बातों में भी होगा, घरों में हम देखते थे गांवों में, बड़े व्यक्तियों को जरा ऊपर की तरफ बैठाना होता ना, खाट पे सिराने की तरफ। अभी किसी कोई बच्चा बैठा है वो खड़ा नहीं हुआ तो बड़े को गुस्सा आएगा, अपमान फील करेगा। देखो तो छोटी सी बात थी, वो प्यार से उसे कह भी सकता है, बेटा इधर को बैठ जाओ। हो सकता है बच्चे को इतना आता ना हो ज्यादा, तो जिसमें देहाभिमान ज्यादा है उसको अपमान की फीलिंग हर जगह होगी। इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मेरी सुनी नहीं, इसने मेरी राय नहीं ली, राय ली तो इसने मेरी राय मानी नहीं। तो हम चेंज करेंगे इसको, बाबा की बहुत अच्छी बात सुनेंगे, मुरलियों में आएगी अभी अभी नजदीक में, दो चार दिन में ही। जो स्वमान में बहुत अच्छी तरह रहते हैं उनको अंदर ही अंदर इतना मान फील होगा कि दूसरों के द्वारा मान आदि की इच्छा ही नहीं रहेगी। आत्मा ऊपर उठ गई, उसका लेवल ऊंचा उठ गया, तो हम स्वमान पर बहुत ध्यान दें। वरदानों में तो रोज स्वमान ही आते हैं, और सबसे ज्यादा स्वमान कौन सा आता है? मास्टर सर्वशक्तिवान, ये बहुत आता है, क्योंकि इससे हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। और जब मनुष्य बहुत शक्तिशाली होता है, देखो दो पहलवान की कुश्ती होती हो, एक ने दूसरे को 10 बार हराया हो, अब 11वीं बार भी वो चैलेंज कर रहा है, तो इसको कैसा लगेगा? आ जाओ भाई, सही लगेगा ना? जो शक्तिशाली होते हैं उन्हें ये माया के चैलेंज, समस्याओं के चैलेंज बहुत हल्के लगते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान पर। ये बहुत ही बड़ी चीज है, इसको रटने से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन इसको गहरी फीलिंग में लाना, इसको स्वीकार करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मुझे भाई बहने इसका दूसरा भी अनुभव सुनाते हैं, कोई यहीं से मुझे सुना रहे थे कि वो केवल 21 बार लिखते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और 4 घंटे तक चित्त शांत रहता है। मुझे भी ये बात बड़ी सुंदर लगी, इतना तो मैं भी नहीं सोचा था। हर एक का अपना अपना भी है, कोई किसी चीज को जल्दी अंदर ले जाते हैं, किसी को स्वीकार नहीं होती वो बात। अगर हम स्वीकार करने लगे, सचमुच मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, ये भी आ रहा है ना मूल्यों बहुत, आज भी था, सर्वशक्तिमान 1000 भुजाओं सहित हमारे साथ है, ये एक नशा है, ये अवेयरनेस है। कोई इसका विजन भी बना सकते हैं, विजन ये चित्र कि बाबा पीछे खड़ा है या आगे खड़ा है, बाप दादा, और उसने अपनी 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर लगाई हुई है। लेकिन इसका नशा रहने लगे हमें कि हम अकेले नहीं हैं, हम सर्वशक्तिवान की संतान, वो हमारा साथी है, तो हम बहुत शक्तिशाली हो गए। जैसे हमें किसी भयानक जंगल से गुजरना पड़ रहा हो, लेकिन हमारे साथ 8 बॉडीगार्ड हो बहुत पावरफुल, चाहे कितने भी शेर आ जाएं, उनके आगे चलेगी नहीं शेरों की, तो मनुष्य निर्भय होके जंगल में जाएगा ना। ये केवल मनुष्यों की शक्ति, हथियारों की शक्ति, और हमारे साथ है, इसको अपनी गहरी अवेयरनेस में उतारें, तो हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, और शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलते हैं, उसे माया और परिस्थितियां आप ही दूर हो जाती, ये आप ही होने लगेगा। जितने हम शक्तिशाली बनेंगे, ये सब निगेटिव चीजें दूर होंगी। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति आता है तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति उसका सामना करने का साहस नहीं करेगा। हम अपने इस स्वमान को बहुत बहुत बढ़ाते चले तो दूसरों के अपमान के शब्द हमें फीके फीके लगेंगे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। और अगर हम स्वमान में अच्छे नहीं रहते तो वो अंदर जाएंगे, इसने ऐसा क्यों कहा, मेरी इज्जत ले ली, ये 4 लोग क्या कहेंगे, मेरा समाज में इतना मान है, देखा अब ये सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसी हूं, तो चिंतन शुरू हो जाता है। तो अपने अच्छे चिंतन से, अपने अच्छे स्वमान से हम दूसरों के अपमान को तत्काल समाप्त करें। 4 लोगों के बीच में उसने हमारी इंसल्ट कर दी और हमारी स्थिति बहुत अच्छी रही, तो वो जो 4 लोग हैं वो ये भी तो देखेंगे, क्या देखा उसने इतना बोला, लेकिन ये मुस्कुराते रहे, तो पॉजिटिव छाप पड़ेगी, उसको लोग बुरा समझेंगे और हमें बहुत अच्छा समझेंगे। तो अपने चिंतन को चेंज करें, दुख हो रहा है, दुख लेने का संस्कार ना हो, दुख तो बढ़ता जाएगा दिनों दिन, बढ़ेगा या घटेगा, क्या शब्द हैं बाबा के, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। इसलिए भाई बहनों को, सभी को, लेकिन मैं माताओं को ज्यादा कहता हूं हमेशा, माताओं को बुरा तो नहीं लगता, अपने को सेंसिटिव नहीं बनाना है, नाजुक नहीं। बहुत कुछ होने जा रहा है, ये दुनिया खाली होने वाली है, जो आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। कबीर ने लिखा बहुत अच्छा, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। तो ये हमारे बहुत सारे परिवार भी रहेंगे या जाएंगे? बहुत प्रैक्टिकल और खुले पूछता हूं मैं, भाइयों से पूछता हूं, धन संपत्ति जो आपने जमा की है वो जाएगी या रहेगी? बलवान भाई बोलो। ज्यादा आपने जमा नहीं की है तो आपकी अच्छी बात है भाई, ये तो सेवाओं में बहुत लगाते हैं और इनकी स्थिति अलग है मैं जानता हूं। लेकिन जो लोग बहुत धन संपत्ति जमा कर रहे हैं, बच्चे खाएंगे, पोतरे खाएंगे, बहुत माताओं को तो पता ही नहीं कि पोतरे नहीं खाएंगे। अब एक माता का आया केस, अपने लड़के को बहुत परेशान कर रही है, शादी करो, ज्ञान में है दोनों, शादी करो, वंश कैसे चलेगा, तुम कहां ये चला गया ब्रह्मा कुमारियों में, शादी करनी है तुम्हें। तो धन साथ देगा? अब सब खेल बदलने वाला है तेजी से, मैं बहुत बार कहता आया हूं क्लासेज में, ओपनली कहता आया हूं, 2020 बीतते इस संसार का खेल कुछ और हो जाएगा, यज्ञ का स्वरूप भी कुछ और होगा, ये वर्तमान नहीं रहेगा, न यहां गंदगी रहेगी न कमजोरियां रहेंगी, ये बनेंगे संसार के महान तीर्थ, जहां लाखों लोग रोज आएंगे। सोचते थे ना लोग, बाबा नहीं आ रहा है, लोग आएंगे नहीं, संख्या बढ़ती जा रही, फिर कंट्रोल करना पड़ रहा है, संख्या दिनों दिन बढ़ेगी। छोटी सी बात में एक उदाहरण दूं आपको, नांदेड़ में सिखों का गुरुद्वारा है, हैं कोई नांदेड़ के यहाँ? है ना, सोने का चढ़ा दिया है पत्रा बहुत सारा अच्छा उस पे भी, मैं भी 2-3 बार जा चुका हूं, मैंने पूछा भाई इस गुरुद्वारे का महत्व तो क्यों है, यहाँ तो पंजाब भी नहीं है, ये पंजाब से बाहर आपका ये गुरुद्वारा इतना फेमस, का सारे संसार से यात्री वहां सरदार लोग आते हैं। तो मुझे कहा, नाम तो मुझे भूल गया, कि फलाना गुरु 3 दिन यहां रहा था, यात्रा पर थे, वो प्रचार कर रहे थे, 3 दिन यहां ठहरे थे। सोच लिया ना आपने भी वही जो मैं सोचा था, मैं सोचा 3 दिन एक अच्छा गुरु, वो तो बहुत अच्छे गुरु थे सिखों के, वो वहां रहे तो तीर्थ बन गया उनके लिए वो, और जहां भगवान हजारों बार आए हों, जहां स्वयं ब्रह्मा के कदम पड़े हों और उसने महान तपस्या की हो, जहां जगदम्बा सरस्वती ने गहन तपस्या की हो, जहां अनेक पवित्र आत्माएं है ना, सभी समझे अपनी पवित्रता के महत्व को, योगी आत्माएं, संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्माएं रहती हों, 3 दिन नहीं पूरा जीवन, तो वो क्या बनेंगे, सोच लें सभी, वो स्थान संसार के महान तीर्थ बन जाएंगे, यह का रूप ही बदलेगा। ये किसी के विजन में नहीं है अभी तक, मुझे भी बहुत सारा नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा तो है कि ऐसा स्वरूप होगा, और तब हम सभी यहां रहने वालों को, और आप माताएं जो व्रस्त में रहती हैं, जिन्होंने अच्छा जीवन बनाया है, उन सबको अपने भाग्य पे नाज होगा, डांस किया करेंगी माताएं अपने भाग्य को देख देख कर, कि हमने 10 बार भगवान से मिलन किया, मधुवन में जाके हम रोज सवेरे उससे मिलते थे। तो सब कुछ बदल रहा है, बाबा की दृष्टि में है सब कुछ, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं होता है, उसके पास प्लानिंग भी बहुत सुंदर है, हम उसकी प्लानिंग को जरा समझने की कोशिश करें, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये उसका है कार्य। तो दुख लेना नहीं है, तैयार करेंगे अपने को। कुछ भी होता है, देखिए ये तो बहुत छोटी बात है ना, किसी ने बुरा बोल दिया, हमें ये कह दिया, हमने एक मास सेवा की, देखो कईयों के साथ क्या होता है, एक मास सेवा की यज्ञ में आके जाते हुए किसी ने कह दिया तुम कैसा, तुम काम ही नहीं करती थी, सोती रही हो, बस दुखी होके घर लौट रहे हैं। कितनी छोटी सी बात है, अपने को तो पता है ना हमने खूब सेवा की है, दूसरों से ज्यादा हमें पता है ना हमने क्या क्या किया, उसकी बात से डिस्टर्ब होके घर जा रहे हैं, सोच रहे हैं अब कभी नहीं आएंगे सेवा करने, हैं तो बड़े खराब लोग हैं। और जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो क्या कहती हैं, ऐसी भी माताएं हैं, तुम कहते रहो हमने खूब सेवा की, हम खूब करेंगे और ज्यादा आया करेंगे। अब कहने वाले जितना ज्यादा कहें, करने वाले उतना ही ज्यादा अच्छा कार्य करें। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, बहुत पहले की बात है, मेडिटेशन हॉल बना था तो अव्यक्त बाबा मधुबन निवासियों से मिलने के लिए आए थे। वो दो मिलन ऐसे सुंदर रहे, एक बार केवल भाइयों से मिले, दूसरी बार बहनों से मिले। अभी ओम शांति भवन नहीं बना था, वो एक मिलन ओम शांति भवन का भी है ऐसे, जिसमें बाबा केवल भाइयों से मिले थे। तो एक बहन जब बाबा के पास आई तो बाबा को बोलने ही नहीं दिया, न दृष्टि देने दी। आते ही कहा, बाबा सब लोग मुझे बहुत बोलते हैं, मैं बहुत दुखी हूं। फिर बाबा मुस्कुराए, फिर उसे दृष्टि दी, लेकिन दृष्टि को वो रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अंदर उसके चल रहा था, ये बहुत बोलते हैं, बीमार रहती है, बहाना करती है, कुछ नहीं है इसको, ऐसे ही सेवा नहीं करना चाहती। बोलते हैं ना ऐसे लोग, माताएं ज्यादा बोलती हैं भाई लोग, बोलो बोलो फटाफट उत्तर दो है। सेफ्टी कर रहे हैं भाई लोग, पर माताएं कह रही हैं कि माताएं ज्यादा बोलती हैं, बोलना नहीं चाहिए, बोलने से दूसरों को हर्ट होता है। तो बाबा ने उसे जो सुंदर बात कही थी, मैं जानता हूं वो उसको तो काम नहीं आई, लेकिन मेरे लिए तो बहुत सुंदर बात रही। बाबा ने दो तीन बातें उसको सुंदर कही। बोलने वालों का काम है बोलना और तुम्हारा काम है अचल अडोल रहना। एक बात देखो कैसे चेंज किया जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में, भगवान स्वयं सिखाता है। दूसरा कहा, जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते तो तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ती हो। अब बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, आप परेशान होंगे तो बोलने वालों को उमंग और आएगा, जरा और ज्यादा बोलते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। ये दोनों बातें बहुत ही सुंदर हैं, ले लें हम अपने अंदर इसको जीवन में। बाबा ने कितनी अच्छी बातें सिखाई। तो इस तरह देखो, बोलने वालों की कमजोरी है बोलना, और इससे हम और शक्तिशाली बन जाएं, अचल अडोल स्थिति बना लें कि हमें अपनी स्थिति को खोना ही नहीं है। इनके बोल के कारण थोड़ा ही हमें अपनी स्थिति बिगाड़नी है। और बाबा ने फिर मुरलियों में कई बार ये सुंदर बातें भी कही, बातें तो आती हैं और जाती हैं, प्रवाह है ना, ड्रामा चल रहा है, तुम इन जाने वाली बातों से अपनी खुशी को क्यों गुम करते हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने इन बातों के लिए कही, जिनको हम बहुत वैल्यू दे देते हैं कभी कभी। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। बहुत सुंदर ये बाबा के महावाक्य हैं। हर बात छोटी है हमारे बड़ेपन के सामने। हम पूर्वज, संसार की मान आत्माएं, इस देव देवियां, प्रकृति के मालिक, और बातों से परेशान, सोचेंगे अपने से बात करेंगे। तो जो मनुष्य अपने जीवन को वैल्यू देता है, जो मनुष्य अपनी स्थिति के मूल्य को समझता है, वो समय को भी महत्व देता है, संकल्पों को भी महत्व देता है और इन छोटी बातों में विचलित नहीं होता। तो बहुत ध्यान देंगे, हमें दुख लेना नहीं है, आने वाले समय में हमें सबको सुख देना है। अगर दुख लेने की आदत पड़ जाएगी, छोटी बातों में दुखी रहने का संस्कार पड़ जाएगा, तो हम दूसरों के दुख निवारण नहीं कर सकेंगे। सोचो उस दिन की कल्पना करो जब बहुत मृत्यु होने लगेंगी, जब संसार में मौतों का एक तांडव नृत्य होने लगेगा। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो लोग सुनाया करते थे कि चेचक का प्रभाव फैला था, तूफान चला था, गांव के गांव खाली हो जाते थे। एक को जला कर आ रहे, दूसरा तैयार, उसको जला के आ रहे, तीसरा तैयार। का रोना भी छोड़ दिया था लोगों ने, प्लेग भी कभी फैला भारत में, यही हाल हो गया था। तो जब ऐसी परिस्थिति आएंगी तब हमें वाइब्रेशंस देकर दूसरों को मदद करनी होगी। इसलिए अभी से अपने को हम बहुत स्ट्रांग बनाएं। मैं मास्टर दुख हरता हूं, सुखदाता की संतान, सुख देने वाली हूं। एक एक को नहीं, तब तो संसार को हम सुख देंगे। ऐसा समय, ऐसा चैलेंज हमारे सामने उपस्थित होने जा रहा है, तो अपने को नाजुक नहीं बनाएंगे, नहीं तो क्या होगा? देखो एक चीज और बहुत भयानक होगी, किसी ने एटम बम छोड़ दिया, कई लाख लोग मारे गए एक साथ, बल्कि आजकल तो संख्या करोड़ों में जाएगी, करोड़ों लोग मारे गए, आत्माएं अभी परम धाम नहीं जाएंगी क्योंकि द्वार खुला नहीं है, उनके विकर्म भी तो विनाश होने हैं ना। अब वो आत्माएं ऊपर भटक रही हैं आकाश में, तो नीचे वालों पर उनका बुरा इफेक्ट रहेगा ही, उनको दुख, उनके दुखों के वाइब्रेशंस नीचे वालों के सुखों को हरने लगेंगे, उनकी बैड एनर्जी बहुतों को सोने नहीं देगी रात को, वो भटकते हुए इधर उधर दिखाई भी देंगे तो संसार में भय का माहौल बहुत फैल जाएगा। हमें इन सब से बचने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, अब अभ्यास की बात नहीं रहेगी, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाना होगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा कि छोटी बातें भी हमें न हिलाएं और बड़ी बातें भी हमें न हिलाएं। हमें याद रहे, क्या याद रहे, कि अब सभी को घर जाना है, मुक्ति का समय आ गया है, ये स्मृति स्वरूप हमें होना पड़ेगा। खेल पूरा हो रहा है, सबके जाने का समय आ गया है, बिल्कुल स्मृति। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी होकर ही देखना है। तो अभी से तैयारी करेंगे तो सहज हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, हाय मेरा ये मर गया, मेरा पोता भी गया, अरे बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा स्वीट था मेरा पोता तो वो भी चला गया, बाबा ने रहम नहीं किया। माताएं दुखी हो जाएंगी। अब माताओं के चेहरे देखो जरा, ये बात सुन के क्यों माताओं के चेहरे ढीले क्यों हो गए भाई? जाना है या नहीं आपके पोतों को भी? बात तो खराब है थोड़ी सी। कहाँ जाना है ये तो सोचो, कहाँ जाना है? एक तो भगवान के पास, दूसरा मुक्त हो जाएंगे और बहुत सारे स्वर्ग में आ जाएंगे। इसलिए घबराने की बात नहीं। तो फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कड़वी बात कह दी, माताओं के चेहरों पे थोड़ी वैसी भाव आ गए हैं कि कैसी खराब बात बोल रहे हैं। नहीं आए, नहीं आए। दुख लेने का संस्कार न हो, सेकंड में हर बात को बाबा के शब्द थे उड़ाते चलो, किसने बुरे शब्द बोल दिया, कुछ नहीं है ये, उसके शब्द उसके पास। अपने में विश्वास, अपनी शक्तियों में विश्वास और बाबा में विश्वास, अपने सुंदर पार्ट में विश्वास, ये हमें बहुत श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचा देगी। तो बहुत ध्यान देंगे, और भी चीजों पे आप ध्यान दें। बीमारी हो गई है कोई शरीर में, अब होती है, उससे भी मन पीड़ित न हो, ऐसा अच्छा प्यास करें कि तन जैसे अलग, बीमारी मुझे है ही नहीं, इस तन को है, होने दो, मैं तो स्वस्थ आत्मा हूं। थोड़ी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो नेचुरल स्थिति बनती जाएगी। और बहुतों को हम देखते हैं, बाबा ने कहा था कवि दादियों के लिए कि जो इष्ट हैं उन्हें कष्ट नहीं होता। गुलजार दादी को मैं देख के आया था, बॉम्बे गया था पीछे, मैंने देखा शरीर की स्थिति तो बहुत ढीली है, लेकिन मुझे उनके चेहरे को देख के लगा कि इन्हें कोई पीड़ा वीड़ा नहीं है, ये मुक्त है उससे, बस जैसे आत्मा शरीर में है, पाठ पूरा करना है उनको, थोड़े बहुत हिसाब किताब है पूर्ण करने हैं, लेकिन कोई पीड़ा उन्हें नहीं है। और नीलू बहन ने कई बार कहा कि दादी मधुबन के लिए कुछ मैसेज देना है, सब बहुत अच्छा है, एक ही लाइन तीन बार बोली, सब बहुत अच्छा है। तो हम भी ऐसे डिटैच होने की प्रैक्टिस अभी करते रहें। तो सभी का ये परम कर्तव्य है, अपने अपने घरों में भी सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं। सभी जो ग्रस्त में रहते हैं, भाई या बहने, परमाताओं को मैं इसलिए ज्यादा कहता हूं कि जो माताएं नौकरियों में नहीं हैं, अपने घरों में रहती हैं, उनको अपने घरों के माहौल को बहुत पावरफुल बनाना है। जिस घर का माहौल पावरफुल होगा, वहां क्या क्या नहीं होगा बोलो भाई, उत्तर देंगे, भय नहीं होगा, ये भटकती आत्माएं उधर देखेंगी नहीं, और क्या नहीं होगा मां हेमसिंह भाई बोलो, घर मंदिर भी होगा, समस्याएं भी नहीं होंगी वहां, ये रोग शोक भी हटते जाएंगे वहां से, आपके बच्चे सब अच्छे रहेंगे वहां, क्योंकि परिवार, कई परिवारों में आजकल बच्चों की समस्याएं बहुत है, छोटे बच्चे भी। एक बच्चे की कहानी आ जाए, 12 साल का है केवल, अब उसकी माँ विदेश में है, उसका डिवोर्स हो गया था, उसकी दूसरी शादी हुई, छोटी आयु थी, अब ये बच्चा नाना नानी के पास रहता है दिल्ली में, 12 साल की आयु का, इतना तंग करता है दोनों को, कहा गला पकड़ लेता है, दबाऊंगा माँ का नानी का। अब बेचारे कहते हैं कहां से मुसीबत बिना मतलब की हमारे घर में आ गई, हमारा घर सुख शांति का। तो बच्चों की ये समस्याएं, कई केस आज ही मेरे पास आए, छोटे बच्चे अति तंग कर रहे हैं। एक और कहानी आई, वो केवल 6 साल का, अति तूफानी, अति मैंने शब्द बोला है, ये भी कम है उसके लिए, कहीं शांति से नहीं बैठता, वो साथियों को मारपीट करता है तो घर में मारपीट करता है, पढ़ाई का तो प्रश्न ही नहीं है, किताबें हैं तो फाड़ के फेंकता है फटाफट। अगर घर में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो ये सब चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। ये योग की शक्ति के वाइब्रेशंस, तीन चीजों पर मैं ध्यान दिलाऊंगा, योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति, और तीसरी जो माताओं के हाथ में है, पवित्र भोजन की शक्ति। ये यदि आप अपने घरों में रखें तो ये समस्याएं भी नहीं आएंगी। नहीं तो आज किसी के घर में सुख शांति है, कल कोई बच्चा कैसा जन्म ले ले, आपसे हिसाब किताब लेने आ गया, पूरे घर को अशांत कर देता है, समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जब कोई ऐसी आत्मा जन्म ले लेती है ना, समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसलिए आपके घर में अच्छी आत्माओं का जन्म हो, आपके घर में ये सब चीजें ना हो, तो बाबा ने जो लास्ट काम दिया है ना इस मुरली में, कौन हूं मैं, मास्टर, कौन सा काम, मास्टर ज्ञान सूर्य। इसके बारे में बाबा ने कई सुंदर सुंदर बातें कही हैं। सभी जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं उन बातों पर जरा अभ्यास करेंगे। पहली चीज बहुत सुंदर है ये बातें, किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को यदि तुम्हें बदलना हो तो वहां ये अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, ऐसा अभ्यास एक एक मिनट भी किया जाएगा तो चारों ओर होगा। यज्ञनिवासी भी करेंगे सभी, और संकल्प के साथ के बाबा का ये महान यज्ञ विघ्नों से मुक्त हो, बहुत जरूरी है। ये विघ्न डालने वाले तो कई हैं और आएंगे, लेकिन विघ्नों को नष्ट करने वाले बहुत पावरफुल हैं, हैं या नहीं? विघ्न डालने वाले हमेशा कमजोर होते हैं, और विघ्नों को नष्ट करने वाले उनसे हजार गुना पावरफुल होते हैं। तो हम विघ्न विनाशक हैं, एक बात। दूसरी बात बाबा ने कही, तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी शक्तियों की किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं, माया नष्ट होती है इस अभ्यास से। तीसरी बहुत पावरफुल बात, इस स्वमान में स्थित होकर यदि तुम किसी को भी दृष्टि देंगे तो उनकी दूषित वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। कोई बुरा पापी व्यक्ति आ गया, बहुत क्रिमिनल आई है उसको, आप इस नशे में स्थित होकर उस पर दृष्टि डालो, आत्मा दूषित वृत्ति नष्ट होंगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा। और अगली बहुत पावरफुल बात है, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, यही तुम्हारा मुख्य कार्य है, बाकी कार्य तो निमित्त मात्र हैं। इनको जरा सभी अच्छी तरह अभ्यास में लाएंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य की किरणें ऊपर से पड़ रही हैं और सारे संसार में फैल रही, आंखों से भी, मस्तक से भी, अंग अंग से भी। तो इस अभ्यास से हमारा चारों ओर का माहौल बहुत पावरफुल होगा, विघ्न नष्ट होंगे। माताओं को पसंद है ना, योग न लगता हो, योग को छोड़ दो, सरल, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में, ये अभ्यास करेंगे। दिन में कई बार कर लो, एक एक मिनट, इसमें घंटों बैठना नहीं है, एक एक दो दो मिनट करेंगे तो वाइब्रेशंस पावरफुल फैलेंगे, और आपके घरों में जो भी बातें आ रही हैं, मैंने एक नई बात कही आपको, आपके घर में किसी आत्मा को जन्म लेना है, अब आपके पोते हैं और कोई है, बच्चे तो जन्म लेंगे, अच्छी आत्माओं का आह्वान होगा आपके घरों में, क्योंकि ये जो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है इसको कोई बाबा नहीं भेजता, ये वाइब्रेशन से आकर्षित होकर आत्माएं आती हैं। तो जितने अच्छे वाइब्रेशन आप अपने घरों में पैदा करेंगे उतनी अच्छी आत्माओं का जन्म होगा। ठीक है, सभी करेंगे, ओम शांति। अभी इसी अभ्यास से योग करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं।